Good morning, everybody. I hope you slept okay.
उम्मीद है कि आपको अच्छी नींद आई होगी.
And that you're feeling comfortable.
और आप आरामदायक महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर.
And nasta zalaka.
नाश्ता हो गया क्या?
That's the most important thing. As long as breakfast is okay, then everything else is all right.
बहुत जरूरी है जब तक नाश्ता ठीक होता है तो बाकी सब ठीक हो जाता है.
So I've been given the topic of living wisely.
तो मुझे ये विषय दिया गया था कि प्रज्ञा के साथ या प्रज्ञापूर्ण रहना.
And I'm not quite sure how I'm going to explain this.
और मुझे खुद को नहीं पता कि इसे मैं किस तरह से बताने वाला हूँ.
So let's see how it turns out.
तो देखते हैं कि कैसे हम आगे जाएंगे.
But obviously if we're going to look at the theme of living wisely, we want to know what wisdom is.
तो अगर हम प्रज्ञापूर्ण जीना इस बात को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रज्ञा क्या है.
So that's a very big topic.
और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा विषय है.
What is wisdom?
प्रज्ञा क्या है?
प्रज्ञा क्या है? Exactly. Well, if we want to know what wisdom is, well, we need to learn from someone who is wise.
तो अगर हम जानना चाहते हैं कि प्रज्ञा क्या है तो हमें ऐसे किसी से सीखना पड़ेगा जो खुद प्रज्ञावान है.
And for us as Buddhists, it's the Buddha who is the supreme wise one.
और बौद्ध होने के नाते हमारे लिए बुद्ध वो व्यक्ति है जो सर्वोत्तम जिनमें सर्वोत्तम प्रज्ञा है.
So it's by studying the Buddha, studying what the Buddha says, what the Buddha does, that we learn what wisdom is.
तो इसलिए बुद्ध का अभ्यास करके बुद्ध ने क्या सिखाया या बुद्ध क्या करते हैं ये देख के हम सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रज्ञा क्या है.
But actually quite a big problem.
लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है.
Because in becoming wise, the Buddha went beyond our understanding.
क्योंकि एक तरह से प्रज्ञावान बनने के लिए हमारी जो समझ है उस समझ के कई परे बुद्ध चले गए थे.
In a way, you could say that you can't say what the Buddha's wisdom is.
और एक तरह से आप कह सकते हैं कि बुद्ध की प्रज्ञा क्या है इसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं बात कर सकते.
Because it goes beyond our ordinary understanding.
क्योंकि हमारी जो सामान्य समझ होती है उसके बहुत परे वो जाता है विषय.
But we'll try to find our way into the Buddha's mind and experience.
लेकिन हम बुद्ध के मन या बुद्ध के अनुभव के भीतर जाने का एक रास्ता खोजेंगे.
And once we've done that, we can start to see what that means for us.
और एक बार हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो हम ये देखना शुरू करेंगे कि इसका अभी हमारे लिए क्या अर्थ है.
So first of all, just to make sure, I'm going to just talk a little bit about the Buddha's own life and experience.
तो शुरुआत में मैं बुद्ध के जीवन और उनके अनुभव के बारे में कुछ बात करके शुरुआत करूंगा.
I'm sure that most of you know the life of the Buddha very well.
मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों को बुद्ध का जीवन बहुत अच्छे से पता होगा.
But it's always good to revisit that life.
लेकिन उस जीवन के पास वारंवार जाना ये अच्छा ही होगा.
In a way, we don't know very much about his early life.
तो एक तरह से उनका जो शुरुआत का जो जीवन था उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते.
A lot of the stories we get are quite late.
तो बहुत सी जो कहानियां हमारे पास वो उपलब्ध है वो उनके बाद के जीवन की है.
You know, like the story about the four sights and so forth.
तो जैसे कि उन्हें जो चार दृश्य दिखे थे उसकी कहानी और उसके आगे की कहानियां.
But that's not in the suttas.
लेकिन ये सब जो है सुत्तों में नहीं लिखा गया है.
But it's something that's sort of read in later on.
और ये सारी बातें जो है बाद में साहित्य में डाली गई है.
What the Buddha himself says is that as a young man, he began to be dissatisfied.
तो बुद्ध स्वयं क्या कहते हैं कि जब वो युवा थे युवावस्था में थे तो वो अपने भीतर एक असहजता को महसूस किया करते थे.
He wasn't dissatisfied in the sense that he didn't have enough money or enough friends or anything like that.
तो ये असमाधान कुछ इस तरह का नहीं था कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे या दोस्त नहीं थे ऐसा कुछ नहीं था.
His dissatisfaction wasn't just unhappiness with his conditions.
तो उनकी जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों की वजह से उनमें वो असमाधान नहीं था.
What he says is that he felt I myself am conditioned.
तो वो कहते थे कि मैं स्वयं जो हूँ अपने आप में कुछ परिस्थितियों से संस्कारित हूँ.
My life is dependent upon a whole range of conditions.
और अलग अलग परिस्थितियों पे मेरा जो है जीवन निर्भर है.
And yet, I'm going in search of other things that are conditioned.
और मैं ऐसे किसी अन्य परिस्थितियों के खोज में जाना चाहता हूँ जो जिस पे मैं निर्भर न रहूँ.
If I'm going in search of money, well, money is conditioned by circumstances.
तो अगर मैं पैसे की खोज में निकलता हूँ तो पैसा कुछ परिस्थितियों पर निर्भर होता है.
Land is conditioned.
जमीन किसी पे निर्भर होती है.
All the things we usually chase after come about through conditions.
तो हर वो चीज जिसके पीछे हम भागते रहते हैं वो किसी परिस्थितियों पर निर्भर होती है.
And if they come about on the basis of conditions, well, they can go when those conditions go.
और अगर परिस्थितियों के आधार पे वो चीजें हमारे पास आती है तो जब वो परिस्थितियां नष्ट होती है तो ये चीजें भी हमसे दूर जा सकती है.
So what the text says is he felt, well, I'm like that. Why am I chasing after other things like that?
तो फिर सूक्त में ऐसा लिखा गया है कि वो कहते हैं कि अगर मैं इस तरह से हूँ तो मैं ऐसी चीजों के पीछे क्यों भाग रहा हूँ जो परिस्थितियों के साथ नष्ट हो जाएगी.
What am I going to gain from that?
और इससे मैं क्या हासिल करने वाला हूँ.
Why don't I go in search of what is not conditioned?
तो मैं किसी ऐसे चीज की खोज में क्यों नहीं जाता हूँ जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है.
So he felt a deep sense of dissatisfaction, which was not merely to do with the circumstances of his life.
तो अपने भीतर वो एक बहुत गहरी असंतुष्टि महसूस कर रहे थे जो सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर नहीं थी.
I'm sure every one of us has some identification with that feeling.
और मुझे लगता है हम में से हर एक अपने भीतर उस असंतुष्टि को थोड़ा बहुत पहचान सकता है.
I remember that quite strongly when I was a young man.
और जब मैं खुद युवा था मैं अपने भीतर उससे जान पा रहा था.
I remember, I had a fairly decent life.
तो मेरा जीवन बहुत अच्छा था.
My parents weren't rich, but they had everything they needed.
तो मेरे माँबाप बहुत अमीर नहीं थे पर हमें जिस भी चीज की आवश्यकता थी वो सब हमारे पास था.
I had a decent education.
मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई.
I had no difficulties really in my life.
और मेरे जीवन में मेरे सामने ऐसी कोई भी मुश्किलें नहीं.
But I remember the feeling that is this all this is about?
तो मेरे अंदर हमेशा ये विचार था कि क्या यही है सब यही जीवन है क्या.
What is this life for?
और ये जीवन किस लिए है.
You know, have this miraculous life for what?
मेरे पास ये अद्भुत ऐसा जीवन है और लेकिन किस लिए है.
Just to live for a while and then die, is that it?
तो क्या कुछ समय के लिए मुझे जीवित रहना और फिर मर जाना है क्या इतना ही है.
I felt that very deeply and very strongly.
तो बहुत गहराई से अपने भीतर में ये और सशक्त रूप से महसूस कर रहा था.
The Buddha seems to have felt it even more deeply and even more strongly.
तो लगता है कि बुद्ध इससे भी ज्यादा गहरे और इससे भी ज्यादा सशक्त रूप से असंतुष्टि को महसूस कर रहे थे.
None of the things that were immediately available to him seemed to him to offer real satisfaction.
तो जो भी चीजें उनके पास उपलब्ध थी तुरंत उपलब्ध थी उनके पास तो उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो लगता था कि उन्हें सुख प्रदान कर सकती है.
In a way, this feeling of dissatisfaction, this deep dissatisfaction, is the basis of the Buddhist life.
और एक तरह से ये जो गहरी असंतुष्टि का भाव है यही बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है.
It's what we call dukkha, which we're going to come back to and look at a bit later.
तो इसे ही हम दुख कहते हैं जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और गहराई से इसे देखेंगे.
But the Buddha felt this very strong existential dissatisfaction.
लेकिन बुद्ध ये अस्तित्व का जो असमाधान है वो अपने भीतर बहुत गहराई से महसूस कर रहे थे.
I'm always interested to see how she deals with philosophical terms. But he couldn't be content with what he'd got.
तो जो भी उनके पास उपलब्ध था उससे वो समाधान महसूस नहीं कर पा रहे थे.
It wasn't a psychological disturbance, if you see what I mean.
तो ये एक मनोवैज्ञानिक ऐसे अस्थिरता नहीं थी अगर कहा जाए.
He seems to have been a very healthy, very emotionally positive man.
तो बहुत स्वस्थ और भावनात्मक रूप से वो सकारात्मक ऐसे मनुष्य थे.
And the story is that, well, he says himself in the texts that he left everything behind.
और कहानी ऐसी है जैसे वो खुद सूत्रों में कहते हैं कि उन्होंने वो सारी चीजें पीछे छोड़ दी.
And that was the old Indian tradition and still is actually today.
और ये पुरानी भारतीय परंपरा है और आज भी वो परंपरा कायम है.
And he went into the jungle in search of what was not conditioned.
तो जंगल में वो चले गए ऐसे चीजों के खोज में जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो.
Of course he had to begin with no guidance.
और शुरुआत में उनके पास कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था.
And he He tried all sorts of things.
और हर तरह की चीज करने का उन्होंने प्रयास किया.
You know all the things that sadhus do today.
तो आज के साधु जो सारी चीजें करते हैं वो सब उन्होंने की.
You know, sitting in one posture for days and days and days.
तो एक ही आसन लगाकर कई कई दिनों तक वो उसमें बैठते थे.
I don't know whether he lay on a bed of nails or anything like that.
तो मुझे पता नहीं किलो के बिस्तर पे वो सोए थे या नहीं.
But he tried tapasya.
लेकिन एक तरह से तपस्या करने का उन्होंने प्रयास किया.
And he tried reducing his diet.
और उन्होंने अपना जो भोजन है आहार है वो कम करने की कोशिश की.
And in the text it says that he was down to eating just one grain of rice a day.
और सूत्रों में कहा जाता है कि उन्होंने अपना भोजन इतना कम कर लिया कि वो अन्न का सिर्फ एक दाना एक दिन में खाते थे.
And just in case we misunderstood, he said, "Don't think that a grain of rice was any bigger then than it is now."
और हमें ऐसा भी बताया जाता है कि इस गलत फहमी में मत रहिए कि उस समय का अनाज का दाना आज के अनाज के दाने से बड़ा हुआ करता था.
And he said that when he touched his belly, it was his backbone that he touched.
और वो कहते हैं कि अगर वो अपने पेट को छूते थे तो ऐसा लगता था जैसे अपनी पीठ को छू रहे हैं.
You sometimes see those sculptures of him in that stage, just a skeleton with skin.
तो कभी कभी उस अवस्था में आप उनकी मूर्तियां देखते हो तो बस कंकाल होता है और उस कंकाल पे चमड़ी चिपकी हुई होती है.
He said when he stroked his skin, all the hair fell out.
तो जब वो अपनी त्वचा को छूते थे तो सारे बाल झड़ जाते थे.
When he got up, he fell down.
और जब उन्होंने उठने का प्रयास किया तो वो नीचे गिर गए.
So he thought, what am I doing?
और फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ.
This is only going to death. It's not getting me to the unconditioned.
और मैं सिर्फ मृत्यु की ओर ही जा रहा हूँ और ये कोई मुझे अच्छी परिस्थिति में नहीं लेकर जा रहा है.
So he went to various teachers.
तो वो बहुत सारे फिर गुरुओं के पास गए.
And the texts tell us that he studied under them so seriously that he attained what they attained.
और सूत्र कहते हैं कि उन्होंने उसका इस तरह से अभ्यास किया कि उनके गुरु जिस अवस्था में थे उस तक वो पहुंच गए.
And they offered him the joint leadership of their sangha.
और उन्होंने उनके संघ का नेतृत्व करने के लिए उन्हें निमंत्रित किया.
But he knew it wasn't what he was looking for.
लेकिन वो जानते थे कि ये वो चीज नहीं है जिसकी वो खोज कर रहे थे.
It was some very lofty experience, but even that experience was conditioned.
तो उन्हें बहुत ही उच्च ऐसे कुछ अनुभव आए थे लेकिन वो अनुभव भी फिर परिस्थितियों पर निर्भर थे.
You can make a very great effort and you can experience a very intense and even lofty mental state.
तो आप बहुत प्रयास करते हो और उस प्रयासों के आधार पर आप बहुत ही उच्च ऐसी मानसिक अवस्थाओं का अनुभव लेते हो.
But when you stop making the effort, down you come.
और जब आप अपने प्रयासों को रोक देते हो तो आप वापस उस अवस्था से नीचे गिर जाते हो.
I don't know whether people do this in India. When I was a child, we used to make houses of cards. Playing cards.
पता नहीं भारत में लोग करते हैं या नहीं लेकिन मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं ताश के पत्तों का घर बनाया करता था.
And you know, you make a really big house out of cards.
और आप उन ताश के पत्तों का बहुत ऊंचा ऐसा एक घर बना लेते हो.
And then suddenly it all just collapses.
और एकाएक वो पूरा घर जो है वो ढह जाता
है. We used to take one card away from the bottom of my brother's and it would all fall down.
तो मैं अपने भाई के इसमें से एक पत्ता निकाल देता था और उसका वो घर पूरा गिर जाता था.
He would do the same to me as well.
और मेरे साथ भी वो ऐसा ही कुछ करता था.
So you can build something up, but it's dependent on what it stands upon.
तो आप कुछ चीज का निर्माण करते हो लेकिन वो उस पे निर्भर करता है जिसके आधार पर वो खड़ा रहता है.
So what's the point of that?
तो बुद्ध ने सोचा कि फिर इसका क्या मतलब है.
It's not the final step.
तो ये कोई अंतिम ऐसा मेरा चरण नहीं है.
And it seems that he then, well, he tells us that he had a memory.
और फिर वो हमें ऐसा बताते हैं कि उन्हें कुछ याद आया.
And this is very important for us practicing today.
और आज जो हम यहाँ पे अभ्यास करें हमारे लिए ये बात बहुत आवश्यक है.
He remembered that when he was a boy, he was with his father in the fields.
तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद आया कि जब वो छोटे छोटे बच्चे थे तब वो अपने पापा के साथ अपने पिताजी के साथ खेत में थे. उन्हें याद आया.
And his father had was ploughing the field with oxes.
और बैलों का सहारा लेके उनके पिता जो है खेतों को जोत रहे थे.
Just as they do down here in the rainy season.
तो बरसात में यहाँ जैसे वो यहाँ के किसान करते हैं.
During the retreats, we hear them out there. Oh, Raja, Raja, and beating the box on.
तो बरसात में जब हमारे यहाँ शिविर चलते हैं तो हम वो बैलों को जो आवाज देते हैं राजा राजा उनकी आवाज हम तक आती है.
Anyway, when you watch it, it's a very peaceful sort of scene, even though they're shouting at the poor ox.
तो अगर उस क्रिया की तरफ आप देखते हो भले ही वो बैलों की ओर चिल्ला रहे होते तो वो देखना बहुत शांति भरा होता है.
You always realize they really love their bullocks, yeah?
और आप हमेशा ये महसूस करते हो कि वो अपने बैलों से बहुत प्यार करते हैं.
Something very, very peaceful, very settling, watching that happening.
तो बहुत शांति भरा और आपको स्थिर करने वाला वो अनुभव होता है जब आप उसे देखते हैं.
So the Buddha, well, he wasn't the Buddha then. Gautama was sitting by the side of the field, just watching the ploughing going on.
तो बुद्ध उस समय वो बुद्ध नहीं थे, गौतम थे. तो वो वहाँ पे बैठते थे और अपने वो खेतों को जोतना वो देख रहे थे.
He was sitting under a jambul.
तो एक वो जामुन का झाड़ था, उसके नीचे बैठे थे.
And maybe he was waiting for the fruit to drop.
और शायद वो राह देख रहे थे कोई जामुन आके गिर जाए.
And he was just very, very sort of contented.
और जो कुछ हो रहा था एक तरह से वो उसमें संतुष्ट थे.
Not thinking about anything in particular, just watching the plow pulling backwards and forwards.
तो विशेष रूप से वो कुछ सोच नहीं रहे थे, सिर्फ खेतों का वो जो आगे पीछे जोतना है उसे वो देख रहे थे.
Maybe watching the soil as it turned.
और जोतते समय वो जो जमीन ऊपर नीचे हो रही थी शायद उसे वो देख रहे होंगे.
And he fell into a very, very concentrated state of mind.
और ऐसा करते हुए बहुत ही एकाग्र ऐसे मन की अवस्था उन्होंने अनुभव की.
But completely naturally, completely spontaneously, without any effort.
तो बहुत स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के.
And great happiness, great pleasure.
बहुत सुख उसमें था, बहुत आनंद था.
Mind very clear, very steady.
मन बहुत स्पष्ट था, स्थिर था.
And when the Buddha remembered this experience, he thought, this is the way to find truth.
और बुद्ध को जब ये याद आया तो उन्हें ऐसा लगा कि यही सच्चाई को खोजने का रास्ता है.
Before that he'd been sort of forcing his mind.
और उससे पहले एक तरह से वो अपने मन को बहुत जोर दे रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे.
He'd been trying to starve his body so that his mind became free from the body, if you like.
तो वो अपने शरीर को यातना दे रहे थे एक प्रकार से, ताकि उनका मन जो है वो शरीर से मुक्त हो जाए.
He'd been meditating, but in a very forcible way.
और बहुत ताकत लगा के एक तरह से वो ध्यान भी कर रहे थे.
And you can sit there and you squeeze your mind somewhere.
तो ऐसा आप कर सकते कि आप बहुत शरीर को तनाव देके बैठ सकते हैं और आपका मन शरीर से एकदम निकल जाता है.
But when you take the card away, it all falls down.
लेकिन जब आप ताश का पत्ता निकाल देते हो तो वो सब ढह जाता है.
But this state came upon him very spontaneously and very freely, very relaxed.
लेकिन ये अवस्था जो बहुत उत्स्फूर्तता से और बहुत ही आसानी से सहजता से उन तक आई.
When you're making a very forcible effort, your mind is quite rigid and quite squeezed.
तो जब आप बहुत ताकत लगा के कुछ प्रयास करते हैं तो आपका मन जो है बहुत तनाव में होता है और जैसे आपने उसे पूरे निचोड़ दिया ऐसा होता है.
But in this very free, very spontaneous, relaxed state, yes, his mind was really clear, really positive.
लेकिन इस बहुत स्थिर और तनाव मुक्त स्थिति में उनका मन जो है बहुत सुस्पष्ट था, स्थिर था.
And very balanced.
और बहुत संतुलित भी था.
So it came to him that this was the way forward.
तो उन्हें ऐसा लगा कि यही आगे जाने का रास्ता है.
By bringing that state back, by coming back to that state, maybe this was where he could see the truth.
तो अगर मैं इस अवस्था में वापस आ सकता हूँ तो शायद यहाँ से मैं सच्चाई को देख सकता हूँ.
So he, as you know, he came to Uruvela, to the banks of the Naranjana River.
तो फिर आप जानते हैं कि फिर वो उरुवेला में आए, निरंजना नदी के किनारे पर.
To what we now call Buddha Gaya.
जिसे हम अभी बुद्ध गया के जानते हैं.
I'll be there in just 4 days.
और 4 दिनों में मैं वहाँ जाने वाला हूँ.
And he just sat down under an enormous peepal tree.
और एक बहुत विशाल ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे.
And he was given a pile of kusa grass to sit on.
और उन्हें कुशा घास की एक गड्डी दी गई जिसका आसन बना के वो बैठे.
And a goat herd girl came by with her goats.
और एक भेड़ बकरियों को चराने वाली एक लड़की अपनी भेड़ों के साथ वहाँ पे आई.
Told her name was Sujata.
हमें बताया जाता है कि उसका नाम सुजाता था.
And she gave him a bowl of kheer.
और उन्होंने खीर से भरा एक पात्र उन्हें दिया.
And so he took food for the first time.
और उन्होंने पहली बार फिर वहाँ भोजन ग्रहण किया.
He must have been almost starved by that time.
और उस समय तक भूख से वो काफी बेहाल हो चुके.
So his body was refreshed.
तो उनका शरीर तरोताजा हो गया.
He was comfortable. He was sheltered by the tree.
तो वो सहज स्थिति में थी और पेड़ के वो सहारे बैठे थे.
He brought back that state of deep concentration, relaxed concentration.
और सहजता से बहुत गहरी एकाग्रता की स्थिति को उन्होंने वापस हासिल किया.
What we call dhyana.
जिसे हम ध्याना कहते हैं.
The ordinary Hindi and Marathi word dhyan is just concentration in general. This is very specific kind of concentration.
तो जो आधुनिक भाषाओं का ध्यान ये शब्द है वो बहुत ऊपरी शब्द है. ये बहुत विशिष्ट ऐसी अवस्था है.
So he sort of revived that experience under the jumul tree.
तो पीपल के उस झाड़ के नीचे उन्होंने अपने उस जो अनुभव है उसे एक बार और तरोताजा किया.
You remember the experience he'd had under the jumul tree and brought it back.
तो बचपन का जो जामुन के नीचे का जो उनका अनुभव था उन्होंने उसे वापस वहाँ पे जीवित किया.
Very interesting. A lot of very significant experiences in the Buddha's life are connected with trees.
तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध के जीवन के जो बहुत ऐसे अनुभव है वो पेड़ों के साथ जुड़े हुए हैं.
Anyway, sitting under the Bodhi tree, he brought back that experience of deep natural relaxation.
तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए वो जो गहरी मतलब अपनी शांति की अवस्था है उसे उन्होंने वापस हासिल किया.
His mind very clear, very sharp.
उनका मन बहुत स्पष्ट था, तेज था, तीक्ष्ण था.
But very flexible, very pliant.
लेकिन बहुत लचीला था, उसे कैसे भी मोड़ा जा सकता था.
And from that state, he woke up.
और उस अवस्था से वो फिर जागृत हो गए.
That's what Bodhi essentially means.
और शायद यही बोधि का मूल अर्थ होता है.
So it's using our experience of waking up after a night's sleep as a metaphor for what happened to him.
तो एक रूपक की तरह हम अपने उदाहरण को देख सकते हैं कि रात को हम सोए होते हैं और सवेरे हम जागते हैं.
Just as we move from one state to another when we move from sleep to being awake, he moved from what we call being awake to being awakened.
तो एक तरह से जैसे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जागते हैं वैसे ही इस वक्त हम जो जागे हुए अवस्था में हैं उस अवस्था से वो और दूसरी अवस्था में जागृत हो गए.
And he realized that he'd done what he wanted to do.
और फिर उन्हें वो एहसास हुआ कि उन्होंने वो कर लिया है जो वो करना चाह रहे थे.
He'd broken free from conditions.
और परिस्थितियों से उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया.
His experience was no longer dependent on conditions.
और उनका अनुभव अब किसी भी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था.
He felt completely free.
और उन्हें पूरी तरह से मुक्त महसूस हो रहा था.
Full of happiness.
पूरी तरह से सुख से भरा हुआ.
And full of wisdom.
और पूरी तरह से प्रज्ञा हुआ.
So what exactly was going on?
तो क्या हो रहा था?
Of course, in a sense, मुझे मालूम नहीं.
तो एक तरह से मुझे मालूम नहीं है.
In a way, I don't know.
एक तरह से मैं सच में नहीं जानता.
We've got some idea of it, but until you've had that experience, you can't fully know what it is.
तो हम थोड़ा कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें खुद वो अनुभव नहीं आता है. हम पूरी तरह से नहीं बता सकते कि वो अनुभव क्या है.
But when you're sitting waiting for lunch to be served, you can smell what's in the kitchen.
तो लेकिन जब आप खाने का इंतजार करते हैं तो किचन से आप खाने की खुशबू को ले सकते हैं.
So even though we can't taste it with our tongues, we can smell it at least.
तो भले ही हम हमारी जीभ से उसका स्वाद नहीं चख रहे तो हमारी नाक से हम उस खुशबू को महसूस कर सकते हैं.
So let's try and get some sniff of enlightenment.
तो इसलिए बुद्धत्व की कुछ खुशबू प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे.
So as I say, we've got a big problem.
जैसे मैंने कहा हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या.
Because essentially the Buddhist experience, because it's not based on conditions, has nothing we can talk about.
तो क्योंकि बुद्ध का ऐसा अनुभव था जो किसी भी परिस्थिति पर आधारित नहीं था तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते.
All our language is built up on the conditioned world around us. Huh?
तो हमारी जो पूरी भाषा है वो हमारे इर्द गिर्द जो परिस्थितियां संस्कारित जग है उसके ऊपर आधारित है.
So how do we talk about something that's not based on the conditioned world around us.
तो फिर हम ऐसी किसी चीज के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जो उस संस्कारित दुनिया से संबंध नहीं रखती?
Well, we've got some ways in because the Buddha, of course, taught and expressed himself.
तो हमारे पास कुछ रास्ते हैं क्योंकि बुद्ध ने खुद भी सिखाया है और उससे समझाया भी है.
So I'm going to talk today about what the Buddha did as an expression of what he realized.
तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि बुद्ध ने क्या किया कि जिसके बारे जिससे उन्होंने बताया कि उसका उनका अनुभव किस तरह का था.
Because, well, to quote the Christian Bible, by their fruits will you know them.
तो अगर बाइबल की हम बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि जो फल आपको प्राप्त होता है उन फलों से आप जान सकते हो कि आपने क्या
किया. If we know what the Buddha did and what he was like after his enlightenment, we've got some idea of what was going on.
तो अगर हम ये जानते कि बुद्ध ने क्या किया और बुद्ध के प्राप्ति के बाद वो कैसे थे तो हम कुछ हद तक समझ सकते हैं कि वो कैसा था.
Then we're going to look at what the Buddha didn't say.
और उसके बाद हम देखेंगे कि बुद्ध ने क्या नहीं कहा.
So in some ways, what his silences are as interesting as his what he said.
तो कभी कभी वो जब शांत रहते थे या चुप रहते थे वो भी उतना ही रोचक है उन बातों की तरह जब वो जवाब देते थे.
But of course, we're also going to look at what he actually said.
लेकिन हम इस बात की ओर भी देखने वाले हैं कि उन्होंने वाकई में क्या कहा है.
So let's start with what he did.
तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि उन्होंने क्या किया.
That we've got fairly good historical records of the Buddha.
तो बौद्ध के बहुत ऐतिहासिक ऐसा हमारे पास लिखा हुआ साहित्य उपलब्ध है.
What the Buddha taught and what he did was remembered orally for several generations.
तो जो बुद्ध ने किया या बुद्ध ने कहा वो मौखिक तौर पे कई शतकों तक लोगों याद रखा करते.
And about 400 years after his parinirvana, his death, it was written down.
और उनके परिनिर्वाण के 400 साल बाद उन सब बातों को लिखा गया था.
What we know best is that which was written down in Sri Lanka.
तो जो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है वो सारा साहित्य है जो श्रीलंका में लिखा गया है.
It's usually called the Pali Suttas or Pali Canon.
और जिन्हें पाली सूत्र पीठक या हम ऐसे कहते हैं.
Pali is now used to refer to the language it's written in.
तो पाली अभी उस भाषा को मतलब दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस भाषा में वो लिखा गया है.
And of course it's a language that will be recognizable to Indians.
और वो ऐसी भाषा है जिसे भारतीय लोग आसानी से पहचान सकते हैं.
At least to North Indians, yeah.
कम से कम उत्तर भारत के लोग उससे करीबी महसूस करते हैं.
It's related to Sanskrit.
वो संस्कृत से कुछ हद तक संबंधित है.
And you'll have heard us chanting in that language and you'll be able to recognize words.
और आपने जो पठन है उस भाषा में सुना है और उसके शब्दों को आप पहचान सकते हैं.
So it's an ancestor of Gujarati, Marathi, Hindi, etc.
तो वो गुजराती मराठी हिंदी की जो है वो मातृभाषा है मतलब उस भाषा से इस भाषाओं का जन्म हुआ.
So the life and teachings of the Buddha were written down in that language in श्रीलंका.
तो बुद्ध का जो जीवन है या उनकी जो शिक्षा है उस भाषा में श्रीलंका में उसे वहाँ लिखा गया था.
But they were also written down in other languages.
लेकिन वो दूसरी भाषाओं में भी लिखा गया है उन्हें.
In Sanskrit and other Prakrits.
तो संस्कृत और दूसरी जो प्राकृत भाषा है उनमें उन्हें लिखा गया है.
So we've got several different streams of transmission of the Buddha's teaching.
तो बुद्ध की शिक्षाओं के जो है बहुत से प्रवाह ऐसे हमारे पास उपलब्ध है.
And the extraordinary thing is they all broadly agree.
और बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात यह है कि वो सारे जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं.
So scholars consider that we do have a very clear idea that the Buddha did live and more or less what he taught and what he was like.
तो इसलिए जो तज्ञ लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि बुद्ध वाकई में जीवित थे और ये बातें सच है जो उन्होंने कही है और सिखाई.
So the first thing we notice is that after his enlightenment the Buddha taught.
तो सबसे पहली बात जो हम ध्यान दे सकते हैं कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहली बात जो की है कि वो उन्होंने सिखाया है.
He lived a very, very simple life.
वो बहुत ही साधा ऐसा जीवन जीते थे.
He just had one robe and a bowl and used to wander everywhere. He didn't go on a cart even.
तो एक ही उनके पास चीवर था, एक भिक्षा पात्र था और हर कहीं वो घूमते हुए जाते थे. उनके पास कार या ऐसा कुछ वाहन नहीं था.
And he went all over north, at least north, top right hand, northeast India.
तो उत्तर पूर्व भारत जो है वहाँ के अंतिम छोर तक वो गए थे.
दिल्ली, टू अ लिटिल बिट इनटू हरियाणा, UP, Bihar, even into West Bengal.
तो दिल्ली हरियाणा यूपी बिहार या पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में वो गए थे.
Even up into Nepal.
वो नेपाल तक भी गए थे.
In fact, that's where he was born.
और वो वही स्थान था जहाँ पे उनका जन्म हुआ था.
So he wandered all over India on foot.
तो भारत में हर जगह वो चल कर मतलब पैदल वो घुमा करते थे.
And he did it so that he could teach.
और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो शिक्षाओं को प्रदान कर सके.
He'd realized something, he'd seen something.
उन्हें कुछ अनुभव हुआ था, उन्होंने कुछ देखा था.
That made him free.
और उसने उन्हें मुक्त कर दिया.
That brought him freedom from all suffering.
और सारे दुखों से उन्होंने मुक्ति पा ली थी.
So he wanted to communicate that to others.
तो इसलिए उस बात को वो दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे.
So you see, what this tells us is that what he realized made him compassionate.
तो ये हमें ये बात बताते हैं कि जिस भी बात का उन्होंने अनुभव किया था उस अनुभव की वजह से उनमें करुणा उत्पन्न हुई.
You can imagine having attained freedom, you could just sit and enjoy freedom.
तो जैसे आप एक स्वतंत्रता का या विमुक्ति का अनुभव ले सकते हैं और आप वहाँ पे उसे बैठ के उसका आनंद उठा सकते.
Nothing's bothering you, so you just relax.
तो आपको कोई चीज परेशान नहीं कर रही तो आप सिर्फ वहाँ से सहजता से बैठ सकते हैं.
Retire.
और आप रिटायर हो सकते हैं.
But no, he didn't do that.
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.
He saw that others needed what he'd found.
तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो उन्हें प्राप्त हुआ है उन्हें उस बात की दूसरों को आवश्यकता है.
So very vigorously, unrelentingly, he went round trying to share what he'd experienced.
तो बहुत ऊर्जा के साथ और बहुत इच्छा के साथ वो यहाँ वहाँ गए ताकि जो उन्हें प्राप्त हुआ था उसकी वो दूसरों को शिक्षा दे सके.
And under quite difficult conditions at times.
और कभी कभी परिस्थितियां बहुत बुरी होती थी.
Dealing with some very difficult people.
और कभी कभी कुछ लोग बहुत कठिन होते थे.
Probably people like us.
हमारे जैसे शायद कुछ लोग.
People who are too stupid to understand what he's trying to tell you.
तो कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो क्या सिखा रहे हैं.
You know, when somebody's trying to tell you how you can be really happy and you won't listen.
तो कोई इंसान आपको बता रहा है आप सही में सुखी कैसे हो सकते हो और आप सुनते ही नहीं हो.
But the Buddha didn't mind.
लेकिन बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता.
Because he wasn't personally interested, huh?
क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन्हें उसमें ऐसे कोई रुचि नहीं.
He was already free. He was already happy.
क्योंकि वो खुद पूरी तरह से मुक्त थे और खुश थे, सुखी थे.
But he didn't want to leave undone what could be done to give people freedom.
लेकिन जो किया जा सकता था लोगों को मुक्त करने के लिए वो किए बिना वो रहना नहीं चाहते.
So this tells us quite a lot about wisdom.
तो ये जो है प्रज्ञा के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है.
Wisdom isn't sitting in some ivory tower, we say in English, in right up at the top and just looking down on the world and just knowing everything.
तो किसी ऊंचे स्थान पे बैठना और बस दुनिया की तरफ देखना कि क्या हो रहा है इसके तरह नहीं होता है प्रज्ञा.
I'm all right, I understand how stupid you are.
तो मैं तो ठीक हूँ और मुझे पता है कि आप कितने मूर्ख हो.
It wasn't that sort of cold wisdom.
तो इस तरह से कोई ठंडी सी ऐसी उनकी प्रज्ञा नहीं थी.
It wasn't just a PhD.
तो उनका बस कोई PhD नहीं था.
Even super PhD.
या सुपर PhD भी उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया.
एक्टिव concern for others.
तो उनकी जो है दूसरों के बारे में एक सक्रिय ऐसी चिंता थी.
So it seems as if his wisdom opened him up to others.
तो ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रज्ञा है उनकी प्रज्ञा ने उन्हें दूसरों के प्रति खुला कर दिया था.
It didn't close him down, it opened him up.
तो उनकी प्रज्ञा ने उन्हें बंद नहीं किया बल्कि उसे उन्हें खुला कर दिया.
We should be so grateful that it did because otherwise we wouldn't be here.
और हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया नहीं तो हम यहाँ पर नहीं होते थे.
Because he did teach out of compassion, we are able to study his teachings now.
क्योंकि करुणा की वजह से उन्होंने जो कुछ सिखाया है उस शिक्षाओं की वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं.
In a way you could say that the compassion of the Buddha is just as important as the wisdom.
तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि बुद्ध की करुणा जो है बुद्ध की प्रज्ञा इतनी ही महत्वपूर्ण है.
And actually they're not really the same, they're not really different things.
और एक तरह से वो कोई दो ऐसी अलग या भिन्न चीजें नहीं है.
The two sides of the same coin.
तो एक ही सिक्के के वो दो पहलू है.
I can't remember what you have on Indian coins. You don't have the queen's head anyway.
तो भारतीय सिक्के में क्या है मुझे याद नहीं रानी का चेहरा तो नहीं होता है.
We have the queen's head on one side and something else on the other.
तो हमारे पास एक बाजू में रानी का चेहरा होता है और दूसरे बाजू में दूसरा कुछ. National emblem on one side and denomination on second side.
Thank you very much. There used to be one with Baba Saheb's head on it. I don't know where that's
on. Yeah, it's still. एक सिक्का होता था जिसमें एक बाजी बाबा साहब का चेहरा होता था.
But yes, it wisdom and compassion are two sides of a coin.
तो करुणा और प्रज्ञा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं.
You can't have one side without the other.
तो एक पहलू के बिना दूसरा पहलू नहीं हो सकता.
You can't, a one-sided coin doesn't make sense.
तो एक ही बाजू वाला सिक्का उसका कोई अर्थ नहीं होता.
So wisdom without compassion doesn't make sense.
तो करुणा के बिना प्रज्ञा कोई अर्थ की नहीं है.
And compassion without wisdom doesn't make sense.
और प्रज्ञा के बिना करुणा का कोई अर्थ नहीं है.
We'll understand a bit more about this, I hope, later.
तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम बाद में देखने वाले हैं.
But the main message I want to communicate of the Buddha's actions after his enlightenment is the compassion.
लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जो बुद्ध का जो कार्य था या कृति थी उसके बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ वो इन्हें उनकी करुणा.
He's an exceptionally capable communicator.
और वो बहुत ही सक्षम ऐसे बातचीत मतलब संवाददाता थे.
Because he had no personal attachments, he was able to enter into direct communication with so many people.
और क्योंकि ऐसे उनकी व्यक्तिगत ऐसी कोई आसक्ति नहीं थी इसलिए वो किसी के भी साथ सहज संवाद कर सकते थे.
And you can see that he's talking to people from all classes, all castes.
और आप देख सकते हो कि हर तरह के लोगों के साथ वो संवाद कर रहे हैं.
And he manages to shape his message to the person.
और वो अपनी शिक्षाओं को एक व्यवस्थित तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे.
You know, if he's talking to farmers, he'll talk about plowing.
तो अगर वो किसी किसान से बात कर रहे हैं तो वो खेत जोतने की भाषा में बात करते थे.
If he's talking to business people, he'll talk about money.
और अगर वो किसी व्यवसायिक से बात करते तो वो पैसों के भाषा में बात करते थे.
If he's talking to kings, he'll talk about ruling.
तो अगर वो किसी राजा के साथ बात करते थे तो राज्य करने की भाषा में बात करते थे.
And so on.
और इसी तरह से उनकी बातचीत.
So again, we can see from that His wisdom meant that he was very, very open to others.
तो और एक बार हम ये देख सकते हैं कि उनके प्रज्ञा का अर्थ ये है कि वो दूसरों के प्रति बहुत खुले थे.
He had a tremendous capacity for empathy.
और दूसरों के साथ एकानुभूति या समानानुभूति महसूस करने की उनमें बहुत काबिलियत थी.
He could see the person and relate to them.
तो वो उस व्यक्ति को देख सकते थे और उसके साथ तुरंत संबंध स्थापित कर सकते थे.
He didn't just get up and give a standard talk.
तो वो सिर्फ ऐसे खड़े रह के एक रटा रटा ऐसा भाषण नहीं देते थे.
Regardless of who was there.
और के इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन है.
He entered into communication and said to people what they needed to hear.
तो वो लोगों के साथ एक संवाद में प्रवेश करते थे और उन्हें जिस चीज की आवश्यकता है वैसे वो उन्हें शिक्षा देते थे.
So whatever we say about wisdom, please keep remembering this.
तो प्रज्ञा के बारे में हम चाहे जो भी कहें आप इस बात को मत भूलिए.
This wise man, the wisest that ever lived according to us as Buddhists, was exceptionally compassionate, exceptionally empathic.
तो ये जो प्रज्ञावान मनुष्य है जो बौद्ध के नाते हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा रखने वाला व्यक्ति है वो अपने जीवन में बहुत करुणावान भी था.
I should emphasize he wasn't nicey-nicey.
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत सिर्फ अच्छा अच्छा मतलब व्यक्ति नहीं है. अच्छा होने के लिए अच्छा ऐसा व्यक्ति नहीं है.
I never managed to catch her out. I will one day. But it could be very blunt with people.
तो लोगों के साथ बहुत रूखा बोलना उनके लिए संभव था.
You know, sometimes he'd say to somebody, "You foolish man."
तो कभी कभी वो ऐसा भी लोग कह देते थे कि तुम बेवकूफ मूर्ख इंसान.
यू डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड येट यू आर टेलिंग एवरीबॉडी एल्स.
तो तुम अपने आप को भी नहीं जानते और तुम सब दूसरों को सबको बता रहे हो.
सो हिज कंपैशन वाज लाइक अ जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
तो उनकी जो करुणा थी वो एक बिजली के झटके जैसी भी थी.
इट वाजंट जस्ट वार्म वाटर.
तो वो सिर्फ गुनगुने पानी की तरह नहीं थी.
To be in contact with the Buddha was to be in contact with reality.
तो बुद्ध के साथ संपर्क में होने का अर्थ होता था कि वास्तविकता या सच्चाई के संपर्क में होना.
He could also be extremely kind.
और वो बहुत ही दयालु थे, दयापूर्ण थे.
There's a famous occasion when one monk was suffering very badly from dysentery.
तो एक प्रसिद्ध ऐसी कथा है कि जहाँ पे एक भिक्षु जो है उन्हें कुछ बीमारी हो गई थी, अतिसार की बीमारी हो गई थी.
And the others had just neglected him.
और दूसरे जो भिक्षु हैं उनकी तरफ नजरअंदाज कर रहे थे उन्हें.
So the Buddha went with Ananda, his attendants, and he just personally cleaned him up, made sure he was all right, brought him what he needed.
तो बुद्ध जो है आनंद के साथ वहां पे गए और उन्होंने खुद उस भिक्षु को स्वच्छ किया और उनकी देखभाल की.
So I hope this gives you some sort of other side to the language of wisdom, which is more cognitive.
तो मुझे लगता है कि इससे आपको प्रज्ञा का और एक पहलू नजर आएगा जो सिर्फ संज्ञात्मक नहीं है.
Wisdom and compassion are one.
तो प्रज्ञा और करुणा जो है एक ही बात है.
Because wisdom breaks down all the barriers.
क्योंकि प्रज्ञा जो है सारे बंधनों को तोड़ देती है.
You realize the barriers are artificial, they're constructed in the mind.
तो आपको ये नजर आएगा जो बंधन जो होते हैं वो कृत्रिम होते हैं और आपके मन से निर्मित हुए होते हैं.
So the consequence of wisdom is compassion, you could say.
तो प्रज्ञा का जो एक परिणाम होता है तो आप कह सकते हो कि करुणा ही प्रज्ञा का परिणाम है.
It's not so much the consequence. It's the accompaniment of, or the other side of.
तो परिणाम है ऐसा ही नहीं है लेकिन वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का दूसरा पहलू होते हैं.
So let's keep remembering this, that we're talking about wisdom, but we're really talking about a wise person who is also compassionate.
तो इस बात को याद रखना हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रज्ञा की बात कर रहे हैं लेकिन एक हम ऐसे प्रज्ञावान मनुष्य की बात कर रहे हैं जो करुणावान भी था.
So then I said I would talk about what the Buddha didn't say.
तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बात करूंगा जिसके बारे में बुद्ध ने बात नहीं की.
That's an interesting project, isn't it? To talk about what somebody didn't say.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा प्रकल्प है ऐसी बातों के बारे में बात करना जो किसी ने नहीं की.
But the Buddha's silences are sometimes very eloquent.
तो बुद्ध की जो शांति थी वो कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण थी.
The Buddha didn't actually say much about the as it were positive content of his experience.
तो बुद्ध का जो अनुभव का सकारात्मक सार था या पहलू था उसके बारे में बुद्ध ज्यादा बात नहीं की.
He was quite reserved about the what it exactly consisted in.
तो किन बातों से उनका अनुभव पूरा निर्मित होता है इन बातों के बारे में उन्होंने उतना नहीं कहा है.
Why?
क्यों?
Because every word he used would be misunderstood.
क्योंकि हर शब्द जो वो कहते थे शायद उसे मतलब गलत तरीके से समझा जाता.
Because he's speaking at one level and we're listening at another.
क्योंकि वो एक स्तर से बात कर रहे हैं और हम दूसरे स्तर से सुन रहे हैं.
And the words are the same.
तो भले ही शब्द सरीके हैं एक जैसे हैं.
But their reference is different.
लेकिन उनका जो संदर्भ है वो अलग है.
You know, when we hear the word wisdom, often what we think of is buddhiman, is clever.
हमेशा हम जब प्रज्ञा इस शब्द को कहते हैं या सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता या बुद्धिमान.
I've heard people say that Buddha means buddhiman.
तो मैंने लोगों को ऐसा भी कहते हुए सुना है कि बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धिमान.
But it means much more than mere cleverness.
लेकिन सिर्फ बुद्धिमान होने से इसका अर्थ बहुत बहुत बड़ा है.
But what we do is we take the things that we don't understand and we fit them into our understanding.
तो ऐसा होता है कि जो चीजें हमें नहीं समझ में आती है नहीं पता होती है उन शब्दों को हम ले लेते हैं और हमारे अनुभव के भीतर वो जिससे मिलती जुलती है उसमें उन्हें ढाल लेते हैं.
So we take something that's as vast as the sky and we put it inside a matchbox.
तो एक आसमान की तरह विशाल हम किसी चीज को लेते हैं और उन्हें उसे माचिस की डिब्बे में बंद कर देते हैं.
And then we say, "Look, I've got it."
और फिर हम लोगों को बताते हैं कि देखो मुझे समझ आ गया है.
So that's why the Buddha was quite cautious.
और इसलिए बुद्ध जो है बहुत सावधानी बरतते थे.
The main things he did say were more metaphorical, rupak.
तो जो मुख्य चीजें उन्होंने कही वो बहुत रूपकात्मक थी.
He talked about it as the cool cave.
तो एक ठंडी सी ऐसी गुफा के तरह उन्होंने उसे बयान किया.
Doesn't work so well if you come from Canada or England.
तो अगर आप कनाडा या इंग्लैंड जैसे देशों से आते हैं तो इस रूपक को आप नहीं समझ पाओगे.
For us, cool means.
तो हमारे लिए ठंडी का अर्थ होता है बहुत ठंड, कड़ाके की ठंड.
We prefer warm as a term.
तो इसके बजाय हम गर्म ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना पसंद.
But in India, particularly in April, May, cool is just wonderful.
लेकिन भारत में और विशेषता अप्रैल और मई के महीने में ठंडा, ये बहुत आनंददायी ऐसा अनुभव होता है.
Well, for me, even April and March are too much.
और मेरे लिए अप्रैल और मार्च भी बहुत बहुत ज्यादा गर्म है.
I've stayed here sometimes until April and then system shuts down.
तो कभी मैंने अप्रैल तक यहाँ रहने की कोशिश की और फिर मेरा पूरी गतिविधियाँ बंद हो जाती थी.
Overload fuse goes.
और मेरा जो फ्यूज है उड़ जाता था.
And I long for a cool cave.
और फिर उस वक्त मुझे एक ठंडी से गुफा की खोज होती थी, तलाश होती थी.
So you imagine the tremendous heat of summer, April, May.
तो अप्रैल मई की जो गर्मी है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं.
All you're doing is dreaming of the monsoon coming.
और उस वक्त आपको बस एक ही मतलब ख्वाब आते रहते हैं कि कब वो बारिश आए.
And you find a cave and it's just so cool.
और ऐसे में आपको एक गुफा मिलती है जो एकदम ठंडी होती है.
So that's the metaphor the Buddha's using.
तो ये वो रूपक है जिसका बुद्ध इस्तेमाल करते हैं.
That you know, in the tremendous heat, you find somewhere it's cool and where you relax, you're relieved of all that heat.
तो बहुत कड़ाके की ऐसी गर्मी और उसमें आपको एक शीतल सी शांत जगह मिलती है जहाँ पे आप उस गर्मी से मतलब थोड़ा सहज महसूस कर सकते हैं, शांत महसूस कर सकते हैं.
So you used quite a lot of metaphors that were to do with cooling down.
तो वो बहुत से ऐसे रूपकों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो शांत होने की बात करते हैं.
Even nirvana really means blown out in the sense of the fire's gone.
तो निर्वाण का भी उनके लिए अर्थ होता है जैसे मतलब बुझ जाना, जैसे आग बुझ गई है.
He used a very lovely metaphor, which is the island in the flood.
तो उन्होंने और एक रूपक का इस्तेमाल किया है कि बाढ़ में एक जैसे हमें बेट मिल गया है.
I know that sometimes here in the monsoon you get far too much rain in a very short period of time.
तो यहाँ पर कभी कभी बहुत थोड़े से समय में बहुत सारी बारिश गिर जाती है.
Even here with the Indriani, I've seen it just almost half a mile wide. Yeah.
तो ये इंद्रायणी नदी को भी मैंने देखा है कि आधे घंटे में वो आधे मैल तक फैल गई थी.
And you see houses are just swept away.
और आप देखते हैं कि घर जो है पूरा उस पानी में बह रहे हैं.
And of course it's far worse in the Ganges Delta, the Ganga Delta and Brahmaputra and so on.
और ऐसे ही गंगा का जो पात्र है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पात्र है उसको भी आप देख सकते हैं, वहां तक वो जाती है.
Sometimes you see photographs, aerial photographs of a huge river. And just a little island in the middle of it.
तो बहुत ऊंचाई से खींचे हुए तस्वीरों में आप देख सकते हो कि बहुत ऐसी चौड़ी नदी है और बीच में जमीन का बस थोड़ा सा टुकड़ा है.
And people have taken refuge there.
और लोगों ने उस जमीन के टुकड़े पे शरण ली हुई है.
So yes, he uses that metaphor.
तो बुद्ध इस तरह के रूपक का इस्तेमाल करते हैं.
Enlightenment, Bodhi, wisdom is like an island in the flood.
तो बुद्धत्व, बोधि या प्रबुद्धत्व, ये जो है इस तरह के मतलब पानी से घिरे हुए जमीन के टुकड़े जैसा है.
And a lot of metaphors are used which are to do with security, refuge.
तो बहुत सारे रूपक वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें सुरक्षा या आश्रय का वो इस्तेमाल करते हैं.
So something you can really rely on.
तो ऐसी चीज जिसके ऊपर वाकई में आप निर्भर रह सकते हो.
But beyond that sort of image, there's not so much that he said.
तो इस तरह के रूपकों के अलावा ऐसी बहुत सारी बातें नहीं है जिसके बारे में उन्होंने बात की है.
Later I will say a bit more about what he did actually say that is approachable for us.
तो इसके बाद में मैं बात करूंगा कि उन्होंने वाकई में क्या कहा जिस तक हम पहुंच सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं.
But he wasn't concerned with philosophy in the normal sense.
तो आमतौर पे हम तत्वज्ञान या दर्शन को जिस तरह से समझते हैं उसकी उन्हें उतनी चिंता नहीं थी.
Later, Buddhists did develop more of a philosophical approach.
तो उसके बाद के जो बौद्ध हैं, उन्होंने उसे एक दर्शन शास्त्र का रूप दिया है, तत्वज्ञान का रूप दिया है.
But he was not particularly concerned to define it.
लेकिन बुद्ध को स्वयं इस बात की चिंता नहीं थी कि वो उसकी व्याख्या करे.
So there's a famous occasion on which he was asked after you are dead, after a Buddha dies, does he exist or not or both or neither?
तो एक अवसर पे उन्हें पूछा गया था कि जब बुद्ध का निर्वाण हो जाता है तो उसके बाद में क्या वो होते हैं, नहीं होते हैं, होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, या दोनों नहीं.
And his answer was none of the above.
तो उन्होंने उत्तर दिया था कि इसमें से कुछ भी नहीं.
Where does that leave us?
तो फिर इसका क्या अर्थ होता है?
He neither is nor is he not.
तो वो है भी नहीं और नहीं भी है.
Nor is he both.
और नहीं है और है, दोनों भी नहीं है.
Nor is he neither.
और दोनों भी बातें नहीं है, सभी नहीं है.
So all the categories of our thought have been neglected.
तो हमारे विचार की जितनी भी कक्षाएं या वर्गीकरण थे उन सबको उन्होंने बेदखल कर दिया.
So what he refused to say already tells us something.
तो जिस बारे में उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था वो भी हमें कुछ बताती है.
It tells us that we cannot understand with our ordinary minds.
तो वो हमें ये बताती है कि हमारा जो सर्वसाधारण मन है उसके सहारे हम उसे नहीं समझ सकते.
Okay, what did he say?
तो फिर उन्होंने क्या कहा?
Please, Subhuti, tell us something that we can get hold of.
बताइए हमें कृपया कि क्या उन्होंने बताया.
Well, he didn't tell us so much about the content of his own experience.
तो अपने अनुभव के सार तत्व के विषय में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया.
But he told us about the content of our experience.
लेकिन हमारे अनुभव के बारे में उन्होंने हमें निश्चित बताया.
He told us what he saw of the conditioned.
तो जो संस्कारितता है इसके बारे में उन्होंने क्या देखा है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया.
And effectively what he said was if we can really understand conditioned experience we'll be able to understand unconditioned.
तो उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम हमारे संस्कारित अनुभवों को समझ सकते हैं तो असंस्कारित अनुभवों को भी हम समझ सकते हैं.
And he told us three principal things about the conditioned. Or I'll say four, I'll add another one.
और संस्कारिता के विषय में उन्होंने हमें तीन प्रमुख तत्व बताए हैं. तो मैं तीन बताऊंगा और बाद में चौथा.
He said it was अनित्य.
तो उन्होंने कहा अनित्य होता है.
अनात्मन.
अनात्म होता है.
दुख.
और दुख होता है.
And he also said that it was शुभ.
और उन्होंने ये भी कहा कि अशुभ भी होता है.
So I'm going to look quite briefly at these. I may need to talk more this afternoon because we're running out of time.
तो थोड़ा-थोड़ा हम इसके ऊपर देखेंगे और दोपहर में और ज्यादा देखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास वक्त कम है.
He said when he looked at everything that makes up our ordinary experience, he saw that everything in it was impermanent.
तो उन्होंने कहा कि जब हम हमारे सर्वसाधारण अनुभव की तरफ देखते हैं तो हर अनुभव जो है उस हर अनुभव में अनित्यता होती है.
He said there's nothing that you can know through your experience that is not impermanent.
तो उन्होंने कहा कि आप अपने अनुभव में ऐसा कुछ भी नहीं खोज सकते या पा सकते कि जो अनित्य नहीं है.
Well done, double negative. It's you know, you just think about this situation.
तो आप इस परिस्थिति के बारे में भी सोच सकते हैं.
You're very fortunate because this talk will stop.
आप बहुत सदैवी हो क्योंकि ये प्रवचन जो है वो रुकने वाला है.
It started, so it must stop.
तो क्योंकि ये शुरू हुआ है इसलिए इसे खत्म भी होना है.
This retreat, it starts and it will stop.
तो ये शिविर ये खत्म शुरू हुआ है और ये खत्म होने वाला
We
है.
Could decide to prolong it.
तो हम इसे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं.
But someday it's got to stop.
लेकिन कभी ना कभी इसे खत्म होना ही होगा.
Even this retreat center, I remember it was started, I think, in 1983.
तो ये शिविर केंद्र भी मुझे जहाँ तक याद है 1983 में शुरू हुआ था.
When I first came, it was still mainly just fields and the old building over there.
तो जब मैं पहली बार आया था तो पूरे खेत थे और नीचे का जो इमारत है पुरानी इमारत वही थी.
One day. It will be gone.
और एक दिन ये सब नष्ट होने वाला है.
It must be.
और इसे होना ही होगा.
One day it will be forgotten.
एक दिन इन सब के बारे में भूल जाया जाएगा.
It will probably be part of the massive city of Pune, Bombay.
या मुंबई या पुणे का जो बहुत बड़ा शहर है उसका ये हिस्सा बन चुका होगा.
I hope not.
मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए.
But one day it will go, definitely.
लेकिन एक दिन निश्चित तौर पे ये चला जाएगा.
Even this whole valley.
ये पूरी जो खाई है ये भी यहाँ से चली जाएगी.
You know, so many millennium ago, there's a vast volcano here.
तो बहुत सारे सालों पहले, शतकों पहले, शताब्दियों पहले यहाँ पे बहुत बड़ा ज्वालामुखी.
A huge lava flow.
और बहुत सारा उसमें से लावा रस बहा था.
The whole Deccan plateau is just lava.
और ये जो पूरा दक्कन का जो इलाका है ये पूरा लावा से बना हुआ है.
The only other place like it is just south of Vancouver in Washington state. Yeah.
और वैंकूवर का जो दक्षिणी हिस्सा है वो भी इसी तरह का कुछ है.
But yes, this was a big flow of bubbling lava.
तो उबलते हुए लावा का यहाँ पे बहुत ऐसा बहाव फैला हुआ था.
And one day it will go.
और एक दिन वो चला जाएगा.
I don't know how.
मुझे नहीं पता कैसा.
One day the sun will explode or something of that kind.
तो एक दिन शायद सूरज फूट जाएगा या ऐसा ही कुछ होगा.
Probably not before the end of this retreat, at least.
हमारा शिविर खत्म होने से पहले तो ना हो.
But one day the earth will go.
लेकिन एक दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी.
So the Buddha said, you cannot find anything anywhere that is not subject to the law of arising and passing away.
तो बुद्ध ने कहा कि आपको कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो निर्माण होने और नष्ट होने के नियम का अनुसरण नहीं करता.
If you really wanted one word to sum up the Buddha's teaching, it's this: it's anicca.
तो अगर एक ही शब्द में आपको बुद्ध की सारी शिक्षाओं को समाना है तो वो ये शब्द होगा, अनित्यता.
If you really understood anicca, you'd have so much else for the Buddha's teaching.
तो अगर आप इस अनित्यता को वाकई में समझ जाते हो तो बुद्ध की शिक्षाओं से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो.
So if we want to start working with wisdom, this is one of the places to start.
तो अगर हम प्रज्ञा के साथ आरंभ करना चाहते हैं तो ये वो स्थान है जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं.
When things break, when they end, when they finish, don't be surprised.
तो जब चीजें नष्ट हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है, तो आप उसका आश्चर्य मत कीजिए.
Because they must.
क्योंकि उन्हें खत्म होना ही होता है.
Even you, dear audience, you must go.
और आप भी मेरे जो श्रोता हैं, आपको भी यहाँ से जाना पड़ेगा.
Even I must go.
मुझे भी जाना पड़ेगा.
One day we'll all be going. We'll be going to the Smashan Bhumi.
तो एक दिन हम सभी को जाना है और हम स्मशान भूमि को जाएंगे.
It's the truth.
ये सत्य है.
There's no escaping it.
तो इस सत्य से हम बच नहीं सकते.
Everything that arises passes away.
तो हर चीज जो निर्माण होती है वो नष्ट भी होती है.
And in a way the Buddha says the secret of happiness is accepting this fully.
और बुद्ध कहते हैं कि सुख पाने का जो रहस्य है ये वो इस बात में कि हम इसे स्वीकार करते हैं.
Of course you're going to feel something, you're going to interact and so on, but don't expect it to be permanent.
तो निश्चित ही आप कुछ महसूस करेंगे, आप उसके साथ कुछ संवाद करेंगे, लेकिन आप ऐसी उम्मीद मत कीजिए कि ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा.
And if it passes away and you feel upset, you've only yourself to blame.
तो अगर मतलब कोई चीज निकल जाती है और आप दुख महसूस करते हैं तो उससे आप खुद को ही अधिक तकलीफ दोगे, पीड़ा
दोगे. A very serious point.
ये बहुत ही गंभीर ऐसा मुद्दा है.
The Buddha really says that all the suffering we experience, we cause.
तो हम बुद्ध कहते हैं हर वो दुख जो हम अनुभव करते हैं वो हमारा ही निर्माण किया होता है.
Well, I think I've gone far enough for today.
मुझे लगता है कि आज के लिए मैं बहुत बोल चुका हूँ.
And it's really good, at least for this morning, it's really good to stay with this theme of impermanence.
और मुझे लगता है कि आज के सवेरे के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम ये अनित्य का जो विषय है उसके साथ रहें.
And in the period that follows this, start to look at and work with this fact.
तो इसके आगे जो मतलब सत्य होगा उसमें आप इस विषय के साथ रहिए और देखने का कोशिश कीजिए कि आपके जीवन में ही किस तरह से कार्यरत है.
Just watch things coming and going.
तो आप देख सकते हैं कि कैसे चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, निर्माण हो रही है, नष्ट हो रही है.
And watch how you feel about it.
और आप देखिए कि आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं.
And try to learn to just watch it without so much attachment.
और बिना किसी तरह से उससे आसक्त हुए बिना उसे देखने को आप सीखने का प्रयास कीजिए.
It's a very, very good exercise, just simply to notice things coming and going.
तो ये बहुत अच्छा ऐसा एक अभ्यास है, सिर्फ ये देखना कि कैसे चीजें निर्माण हो रही है और नष्ट हो रही है.
It's all around us.
तो ये हमारे तरफ, हमारे आजू बाजू हर तरफ है.
There was glass in that window.
तो उस खिड़की में कांच हुआ करता था.
It's gone.
अब वो चला गया है.
Maybe it will come again and then it'll go again.
तो वो कांच वापस आ सकता है और फिर शायद वापस जा सकता है.
There was plaster on the ceiling. It's fallen down.
तो इस छत पे प्लास्टर हुआ करता था और अब वो चला गया है.
वगैरह वगैरह वगैरह
वगैरह.
But just notice things.
तो आप इन चीजों का निरीक्षण कीजिए, चीजों का.
A leaf falls from the tree.
तो पेड़ से एक पत्ता गिरता है.
Impermanence, anicca.
तो ये अनित्यता है.
So that's perhaps the main point of my talk this morning.
तो आज के सवेरे का मेरा जो प्रवचन था उसका वो एक मुख्य मुद्दा है.
But remember a little bit of what I said earlier.
लेकिन इससे पहले मैंने जो कहा उसका भी आप थोड़ा बहुत कुछ याद रखिए.
Remember that there's something about the Buddha's realization that we can't know with our ordinary minds.
तो बुद्ध के अनुभूति का कुछ ऐसा हिस्सा है जो हम हमारे सर्वसाधारण मन से नहीं समझ सकते.
And if we think we can, we've just brought the Buddha down to our level.
और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि बुद्ध को हमने हमारे स्तर तक नीचे खींच लिया.
We can get somewhere towards the Buddha, but not with our ordinary minds.
तो हम बुद्ध की ओर कुछ हद तक जा सकते हैं, लेकिन हम हमारे सर्वसाधारण मन के साथ नहीं जा सकते.
And then finally, just to remind you that wisdom is completely conjoined with compassion.
और दूसरी एक बात आपको याद दिलाने के लिए कि प्रज्ञा पूरी तरह से करुणा के साथ सम्मिश्रित है.
And soon as we think of wisdom, we should think of compassion at the same time.
तो जैसे ही हम प्रज्ञा के बारे में सोचते हैं, उसी वक्त हमने करुणा के बारे में भी सोचना चाहिए.
Actually, we can't really think of wisdom. We can only think of a wise person.
तो प्रज्ञा के बारे में हम नहीं सोच सकते, हम किसी प्रज्ञावान मनुष्य के बारे में ही सोच सकते.
There isn't a sort of abstract quality wisdom floating around somewhere.
तो ऐसे कोई मतलब अनदेखी ऐसे कोई गुण नहीं है प्रज्ञा नाम का जो कहीं हवा में ऐसा तैर रहा है और हम उसे लपकने की कोशिश कर रहे हैं.
We have to become wise.
तो हमें प्रज्ञावान बनना होता है.
Becoming wise means becoming compassionate.
और प्रज्ञावान होने का ही अर्थ होता है कि हम करुणावान बने.
So I hope we've got at least a little way into how what we mean by living wisely.
तो मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा कदम बढ़ाया है समझने के लिए कि प्रज्ञा के साथ जीने का अर्थ क्या होता है.
But later we'll start to go into the other what are called marks, lakshana.
लेकिन बाद में हम और लक्षणों की ओर भी जाने वाले हैं.
Although the last one isn't strictly a lakshana.
तो आखिरी जो है उसे लक्षण की तरह नहीं कहा जाता, उसका जिक्र नहीं किया जाता.
But we're going to explore them more deeply, and they show us how a wise person sees the world.
और उन्हें हम और गहराई से देखने वाले जो हमें बताएगा कि एक प्रज्ञावान मनुष्य दुनिया को किस तरह से देखता है.
And that, if we work with the way the a wise person sees the world, we begin to get a bit wise ourselves.
और जब हम ये जानते हैं कि प्रज्ञावान मनुष्य दुनिया को किस तरह से देखता है, तब हम भी कुछ हद तक प्रज्ञावान बन जाते हैं.
We wise up.
और हम प्रज्ञावान बनते हैं.
Okay. It's a little attempt at a North American term to wise up. We become a little bit more wise through seeing how the Buddha sees our world, the world as we experience it.
तो हम प्रज्ञावान बनते हैं और हम देख पाते हैं कि बुद्ध जो है दुनिया को किस तरह से देखते हैं, हमारी दुनिया को किस तरह से देखते हैं.
Thank you. And thank you.